ये है 20-10-90 का ट्रैफिक लाइट, 9 नंबर के रजिस्टर में लगा चुके।
गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहान कैसे पा लिया है, ऐसा कौन है जिसे पाके सारी दुनिया पाली, क्योंकि सारी दुनिया बीज में समाई हुई है और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बाप है दो बेहद के, एक आत्माओं का बाप परमात्मा शिव ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल, और दूसरा है मनुष्य आत्माओं का बाप जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा शिव को जीवात्मा नहीं कहेंगे, तो मनुष्य आत्माओं में जो बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज, अगर उस बीज रूप बाप को पहचान लिया जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो परमात्मा के स्वरूप की विशेष प्राप्ति हो गई। क्योंकि सामान्य नॉलेज में तो आती है, बेसिक नॉलेज में बात आती है परमात्मा क्या है, ज्योतिबिंदु है, ये सामान्य नॉलेज हुई, विशेष नॉलेज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही ज्योतिबिंदु नहीं है, लेकिन मनुष्य सृष्टि की सारी ही आत्माएं ज्योतिबिंदु है। मनुष्य आत्मा ही नहीं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी की आत्माएं ज्योतिबिंदु है। तो परमात्मा ज्योतिबिंदु है, इससे उसकी पेक्युलरिटी का कोई पता नहीं चलता। कौन सा ज्योतिबिंदु परमात्मा है, हम किस ज्योतिबिंदु को याद करें तो हम समझें कि परमात्मा को हमने याद किया। क्योंकि बिंदु बिंदु तो सब आत्मा एक जैसी, तो यह विशेष बात इस गीत के द्वारा क्लियर होती है। क्योंकि गीत भी बाबा के बनवाए हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में, तो तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, ऐसा कौन सा बीज है जिसमें सारा जहान समाया हुआ है, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता। उस प्रजापिता रूपी बीज में सारी मनुष्य सृष्टि का सार समाया हुआ है। जैसे कोई वृक्ष होता है उसका बीज कितना छोटा होता है, बनियन ट्री की मिसाल दी जाती है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ से, तो बीज बहुत छोटा और झाड़ बहुत बड़ा, लेकिन उस बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। इसलिए उस संस्कृत की गीता में भी कह दिया है न अहम तेषु ते मय, माना मैं उन पत्तों में नहीं समाया हुआ हूं, लेकिन वे पत्ते वे पूरा झाड़ टहनियां डालें जड़ें सब मेरे में समाई हुई है। तो कौन सा ऐसा बीज है जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि रूपी आत्माओं का भाव स्वभाव संस्कार समाया हुआ है, अच्छे ते अच्छा और बुरे ते बुरा, तो वो बीज है प्रजापिता। उस प्रजापिता रूपी बीज में ही परमपिता परमात्मा शिव ज्योतिबिंदु प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, वरना उस प्रजापिता की भी पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि 84 जन्मों में जन्मण के चक्र में आने वाली राम कृष्ण की सोल पहचानने में नहीं आती। ये तो परमात्मा सुप्रीम सोल बाप जब संगम युग में आते हैं तो हम बच्चों को अपनी आत्माओं का और अपनी पहचान देते हैं। तो तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, क्या शिव ज्योति बिंदु को पाके जहान पा लिया है? हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग, आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति है। परमात्मा शिव आत्मा है और प्रजापिता मनुष्य शरीरधारी वो रथ है परमात्मा का। दोनों को मिलकर के परमात्मा का स्वरूप बनता है जो पहचाना जाता है, वरना तो पहचान में परमात्मा आ नहीं सकता। तो उस परमात्मा बाप को पहचान करके हमने जैसे सारा जहान पा लिया, जैसे बीज मुट्ठी में है तो सारा वृक्ष मुट्ठी में आ जाता है। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। क्यों कहते हैं? काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों को जिसने जीत लिया उसने सारी राजाई जीत ली। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों की स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। कोई हद की राजाई नहीं लेते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट की राजाई या कोई गांव की राजाई या कोई एक देश की राजाई नहीं, सारे विश्व की बादशाही हम बाप से लेते हैं। यह हुआ बेहद का वर्षा, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो राजाइयां तो दूसरा राजा आक्रमण कर देता है, छीन लेते हैं। ये राजाई तो हमको ऐसी मिलती है जो 2500 वर्ष हमसे कोई छीन नहीं सकता, वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। कहां जिस नई दुनिया में बाप हमको ले जा रहे हैं, वहां दूसरा कोई छीनने वाला दुश्मन होता ही नहीं। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, अर्थात वहां कोई दूसरे विचार वाला, दूसरी मत वाला, दूसरे धर्म वाला, दूसरी भाषा वाला कोई द्वैतवादी होगा ही नहीं। ये तो जब द्वापर आता है तब द्वैत शुरू होता है, तब दो दो मतें शुरू होती हैं, तब लड़ाई होती है, तब एक दूसरे की राजाइयां छीनी जाती हैं। तो बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है, राम राज्य है अपना और रावण राज्य है पराया, दूसरे का। अभी तुम समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? कि हम पराये राज्य में बैठे हैं या अपने राज्य में बैठे हैं? पराये रावण राज्य में बैठे हैं। अभी रावण का राज्य है, रावण का कंट्रोल है। अभी हम समझ रहे हैं इस बात को कि ये रावण का राज्य है, पराया राज्य है, राम राज्य नहीं है। अर्थात राम की आत्मा के हाथ में राज्य अभी नहीं आया है। राज्य किसका चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। कोई कहे क्यों? जब निराकार राम साकार राम के तन में प्रवेश कर गया तो राम का राज्य होना चाहिए। कम से कम हम बच्चों के ऊपर तो राम का राज्य होना चाहिए। दुनिया की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि दुनिया भी तो तीन बन गई हम बच्चों के हिसाब से। एक दुनिया तो 500 करोड़ की है ही है, चलो वहां तो रावण राज्य है। दूसरी दुनिया आधारमूर्त आत्माओं की, जड़ों पर बैठी हुई ब्राह्मण आत्माएं, जिन ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई, चलो उसमें भी मान लिया जाए कि उसमें भी अनेक धर्म की आधार मूर्त आत्मा इकट्ठी हुई पड़ी है। तो एडवांस पार्टी में बीज रूप आत्मा है, तो बीज रूप आत्मा तो कम से कम राम राज्य में है कि वो भी नहीं है? कहेंगे वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज रूप आत्माओं में हर प्रकार के बीज भरे पड़े हैं, सारी दुनिया के बीज, अच्छे ते अच्छे बीज और बुरे ते बुरे बीज, हर धर्म के बीज इन एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं में मौजूद हैं। और जब तक बीज का सुधार नहीं होता, तब तक वृक्ष का सुधार नहीं हो सकता। तो बीजों में भी जो बीज रूप आत्माओं की माला है, जिसे रुद्रमाला कहा जाता है, वो रुद्रमाला सब धर्मों के बीजों की है। और सब धर्मों के बीज जो जिस धर्म का लबादा पहने हुए, अर्थात जिस बीज में जिस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, वो अपने देह अभिमान का छिलका शो जरूर करेगा। और शो करेगा तो उसके पार्ट की प्रत्यक्षता जरूर होगी, शो न करे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाप है सबसे बड़ा दर्पण, और बाप के जो रहने का स्थान है संगम युग में, जिसे मधुबन कहते हैं, चाहे वो ब्राड मधुबन हो बाद में, और चाहे वो मिनी मधुबन हो जो बच्चे तैयार करते हैं, दोनों ही मधुबन में बाप का आरसी रखा हुआ है। जिस मधुबन को बाबा ने बताया है कि मधुबन एक शीशे का महल बन जाएगा, जिसमें कोई भी आत्मा अपने को छुपाए नहीं सकेगी। तो जो जिस धर्म का लबादा पहने हुए है, वो लबादा उसका प्रत्यक्ष जरूर होगा, वो छिलका जरूर क्लियर हो जाएगा। वो छिलका जब तक उतरता नहीं है ज्ञान योग की पावर से, तब तक वो बीज रूप आत्मा भी देवी देवता सनातन धर्म की पक्की नहीं कही जा सकती। क्योंकि दूसरे धर्म का देह अभिमान रूपी खोल चढ़ा हुआ है, और जब दूसरे धर्म का देह अभिमान रूपी खोल चढ़ा हुआ है, तो ऐसी आत्माएं अपना देह अभिमान जरूर दिखाएंगी, उन्हें बार बार बाप की स्मृति भूल जाएगी। क्योंकि जहां आत्माभिमान है वहां बाप है, जहां देह अभिमान है वहां बाप हो नहीं सकता। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं रूहानी बाप, कैसे बच्चों को समझा रहे हैं, रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अर्थात जिस्मानी स्टेज में रहने वाले बच्चों को नहीं समझाते, देह अभिमान में रहने वाले बच्चों से बात भी नहीं करते, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। क्योंकि देह अभिमान में रहने वाले बच्चे तो बाप को मानेंगे ही नहीं, अपने ही चलाएंगे, अपनी मत देंगे। तो बाप का कहना है कि बच्चे अब अद्वैत राज्य समाप्त होने वाला है, द्वैत राज्य समाप्त होने वाला है, अद्वैत राज्य आने वाला है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बनाए रहे, निर्विकारी बनाए रहे। निर्विकारी है राम राज्य में और विकारी है रावण राज्य में। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, रावण राज्य वाले भी कहेंगे ऊंचते ऊंच भगवान, और राम राज्य वाले भी कहेंगे ऊंचते ऊंच भगवान। भगवान को तो सब ऊंच मानते हैं, क्यों? राम राज्य वाले देवता हैं तो ऊंच माने तो ठीक, रावण राज्य वाले रावण को ऊंच माने, भगवान को ऊंच क्यों मानते हैं? हैं? क्योंकि रावण राज्य वालों को भी पता चल जाएगा कि रावण का भी रूप धारण करने वाला वो राम की ही आत्मा है, जो सब रावण संप्रदाय को सुधार देती है। इसलिए मुरली में बोल दिया, राम सो रावण बनता है और कृष्ण सो कलयुग के अंत में कंस बनता है। इसलिए उस बीज में सब कुछ भरा पड़ा है, अच्छे से अच्छा भी है तो बुरे से बुरा भी है। राम राज्य मेरा है तो रावण राज्य मेरा नहीं है क्या? इसलिए बाप मुरली में बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। मतलब क्या हुआ? किस बात में बाप? ऑलराउंड बाप आया हुआ, तुम्हारी अच्छी करनी में भी बाप और तुम्हारी बुरी करनी का भी बाप आया हुआ है। तुमको सुधरना पड़ेगा, अच्छे तरीके से नहीं सुधरोगे। ब्रह्मा रूपी बड़ी माँ, ब्रह्म माँ, बड़ी माँ के प्यार से नहीं सुधरोगे, देवताईपने से नहीं सुधरोगे, तो असुरों का भी बाप आया हुआ, असुरों को आसुरियत से सुधार लेगा। इसलिए गीत क्या चला है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। देवताओं का भी बाप है तो असुरों का भी बाप आया हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, असुर भी कहेंगे तो देवता भी कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है जिनको असुर भी माने और देवता भी माने। भारतीय परंपरा में ऐसा एक ही देवता है जो असुरों में भी माना जाता है भगवान के रूप में, असुर भी उसकी उपासना करते हैं और देवताएं भी उसकी उपासना करते हैं। वो कौन सा देवता है? शंकर। असुरों ने भी उसकी पूजा की, देवताओं ने भी उसकी पूजा की, असुरों को भी वो उसी दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से, और देवताओं को भी समान दृष्टि से देखते हैं। असुर अगर हिम्मत करें तो हिम्मते बाप व हिम्मते बच्चे तो मर्द दे बाप, और देवताई बच्चे अगर हिम्मत करें तो हिम्मते बच्चे मदर दे बाप। बाप दोनों प्रकार के बच्चों की मदद करने के लिए तैयार, सिर्फ हिम्मत के कदम बच्चों को बढ़ाने। दीदी दादियां दादाएं आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में आज जो बैठे हुए हैं वो भी किस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं? हिम्मते बच्चे तो मद दे बाप। भले माया का भी रूप कोई ब्राह्मण है, साक्षात माया रूपिणी बनने बैठे हैं, लेकिन हिम्मत के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो जो हिम्मत करते हैं बाप उनको मदद देने के लिए तैयार। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इन्होंने इतनी ताकत कहां से पाई जो दुनिया की इतनी बड़ी जनरेशन के ऊपर कंट्रोल कर बैठे? हिम्मत की तो बाप से मदद मिली। तो ऊंचते ऊंच भगवान तो सर्व कहेंगे, सर्व मन देवताएं भी कहेंगे तो असुर भी कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है जिनको सब मानते हैं। तो ये भी समझाना है क्या कि बाप उसको ही कहा जाता है जो असुरों का भी बाप हो तो देवताओं का भी बाप हो, लफुल बच्चों का भी बाप प्यार का सागर, और फिर लाफुल बच्चों का भी बाप धर्मराज स्ट्रिक्ट और कोमल, दोनों का पार्ट प्ले करने वाला एक ही बाप। लिखना भी है भारत संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वो अब विकारी नरक बन गया। नरक मन नरक ही नहीं कहते, रौ रवर नरक मन जहां कीड़े मकोड़े रौरे आते रहते हैं, रौरे हाट मचाना मन एक दूसरे को काटते रहते हैं, एक कीड़े ने दूसरे को काटा, दूसरे ने तीसरे को काटा, तीसरे ने चौथे को काटा, तो ये विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं कि साधार पर बनाए रहे हैं? श्रीमत पर, मनुष्य मत पर नहीं, दीदी दादी दादाओं की मत पर नहीं, अपनी मत पर नहीं, कोई देवता की मत पर नहीं कि शंकर की मत पर या ब्रह्मा की मत पर या कृष्ण की मत पर नहीं, श्रीमत अर्थात जिससे श्रेष्ठ कोई मत दे ही नहीं सकता, उस बाप की मत पर हम भारत को स्वर्ग बनाए रहे। बाप जो बताते हैं उसको नोट करके फिर उस पर विचार सागर मंथन करके लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य नहीं था, कब जब स्वर्ग था। बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बनाए रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं, भारत को तो बनाए रहे हैं, दुनिया को तो बाप निर्विकारी बनाए रहे हैं, ये तो दूसरों को सुनाना है, लेकिन सुनाने से पहले क्या करना है, पहले अपने को देखना है हम निर्विकारी बने हैं, क्योंकि खुद बने होंगे या बनने के सच्चे पुरुषार्थी होंगे तो दूसरों के ऊपर भी कहने का असर पड़ेगा, नहीं तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं, ऐसे भी होते हैं, मुंह बक्का बहुत होते हैं, है ना, गरजते बहुत हैं और बरसते कम हैं, बोलेंगे बहुत, दूसरों को बहुत ज्ञान सुनाएंगे, परमात्मा स्वर्ग बनाने आया है, नरक का विनाश करने आया हुआ है, अब ये नरक की दुनिया खलास होने वाली है, लेकिन खुद नरक बनाने से बाज नहीं आएंगे। नरक माने वैश्यालय, जहां वैश्याएं बनाई जाती हों, जहां लंपट बनते हों, स्त्रियों के पिछाड़ी पिछाड़ी फिरने वाले, उनको कहा जाता लंपट, तो वैश्या और लंपटों की दुनिया ही नरक कही जाती है, कीड़े मकोड़ों की दुनिया। तो अपन को देखना है, मैं ईश्वर को ठगता तो नहीं हूं, ऐसे तो नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है, क्या हम क्या करते हैं, तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल नहीं सकते, तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है, एक के सिवाय और कोई पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है, ये उसी का धंधा है, और किसी का ये धंधा हो नहीं सकता। क्यों? मनुष्य गुरुओं का ये धंधा क्यों नहीं हो सकता? खुद बने होंगे। अच्छा, जितने बने होंगे उतना बना देंगे, आप सामान तो बना देंगे है? चलो, परमात्मा एवर प्योर है, वो एवर प्योर है, एवर पावन है, लेकिन गुरु लोग नंबरवार पावन तो हैं, तो नंबरवार की लिस्ट तक तो पहुंचा देंगे कि वो भी नहीं पहुंचाएंगे? तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नरक को स्वर्ग बना ही नहीं सकता, पतितों को पावन बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि एवर प्योर ही प्योर दुनिया बना सकता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, राम, कृष्ण, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि की, वो सबको संग का रंग लगता है। एक परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ही ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लगता। तो वो जिस मुकर्रर रथ में आता है उसकी पूरी जिम्मेवारी लेता है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तुम सिर्फ डायरेक्शन पर चलो। तो जिस रथ की जिम्मेवारी लेता है उस रथ का तो कल्याण हुआ ही पड़ा है, उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एवर प्योर परमात्मा शिव ने जिसको स्वीकार किया, जिसको अपनाया, उसका तो कल्याण होना ही होना है। कोई साधारण मनुष्य आत्माएं किसी के ऊपर हाथ रख देती है रक्षा का, तो वो भी अपने विरुद्ध का पालन करती है। तो सुप्रीम सोल तो फिर सर्वशक्तिवान है, उसकी छत्र छाया में पलने वाली आत्माएं उनका बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन समर्पण होने की बात है, जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल होगा, माने ज्ञानी तू आत्मा बनेगा, और जितना ही ज्ञानी तू आत्मा बनेगा उतनी ही पावरफुल आत्मा बनेगा। क्योंकि ज्ञान का बल भी एक बल है। शिव की ज्योति कोई स्थूल ज्योति नहीं है, वो भी ज्ञान की ज्योति है। तो एक ही बाप है पतितों को पावन बनाने वाला। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था, ये संपूर्ण निर्विकारी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी नरक है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझा करके ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए। तो ये समझ की बात है ना। तो जिसको याद रहेगा हमने कैसे 84 जन्म लिए, तो ये भी याद रहेगा कि हम कैसे पतित बने और कैसे पावन बने। एक के संग के रंग में प्रैक्टिकल आने से पावन बने, और अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने। ये संग का रंग कोई बुद्धि का ही नहीं रहा, मन, वचन, कर्म, संबंध के आधार पर संग का रंग चढ़ता है, तो द्वापर युग से पतन क्यों हुआ? क्योंकि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, अनेक अनेक प्रकार के द्वैत द्वैतवादी, दूसरा दूसरा मत धर्म फैलाने वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में हम भारतवासी आने लगे, तो भारत का पतन हो गया। तो जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने 84 जन्म लिए हैं, पहले आए हैं माने सतयुग में, सतयुग में भी तो कोई पहले जन्म में आए होंगे, कोई दूसरे तीसरे जन्म में। तो जो सतयुग में भी सबसे फर्स्ट जन्म में आए, पूरे जिन्होंने 84 जन्म लिए, वो ही पक्के देवता है, और बाकी 82, 83, 81 बर्थ लेने वाले पक्के देवता धर्म के नहीं है, जरूर वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। तो बाप 84 जन्म बता करके फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के साधारण तन में प्रवेश करता हूं। क्या कहा? 84 जन्म बताए कर फिर कहते हैं, पहले बताते हैं कि तुम्हारे 84 जन्म हैं, और बताने के बाद फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में, किनके बहुत जन्मों के अंत में, इनके तुम्हारे नहीं, इनके इनके किसकी तरफ इशारा? बाजू वाली सोल। कौन सी बाजू वाली सोल? तादालेखराज, ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं। इस दुनिया में साधारण तन किसे कहा जाए और असाधारण तन किसे कहा जाए? पहले पेज का मध्यांक। तो बहुत जन्मों के साधारण तन में प्रवेश करता हूं, तो उस हिसाब से ब्रह्मा के तन को साधारण तन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा का तन अच्छा खासा गोरा चिट्ठा राजाओं के मुआफिक व्यक्तित्व वाला तन था, उनका आकर्षण ही विशेष था। शिव बाबा के प्रवेश करने से पहले ही तो उसको साधारण तन नहीं कह सकते, आर्थिक रीति से भी साधारण नहीं और शारीरिक रीति से भी साधारण तन नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहां बोला कि 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, यानी पहले 84 जन्म बताते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा, फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं। अर्थात ब्रह्मा का भी जब 84 जन्म का अंत होता है 69 में, तो 69 में वो आत्मा भी सूक्ष्म शरीर धारण करती है, और सूक्ष्म शरीर भी जब पूरा होता है तब वो आत्मा जिस ब्राह्मण बच्चे का आधार लेती है, वो बच्चा ही ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा तन में ही परमात्मा शिव को प्रवेश करना है, क्योंकि ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश होती है, जिसकी यादगार शंकर के मस्तक पर आज भी चंद्रमा अधूरा दिखाया जाता है। तो इसलिए बोला कि 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं, फिर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। क्या पहले भी नाम रखा? क्या ब्रह्मा, लेकिन वो हो गया साकार ब्रह्मा, साकारी स्टेज वाला। क्योंकि ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। महात्मा बुद्ध का फोटो देखो, क्राइस्ट का फोटो देखो, गुरु नानक का फोटो देखो, उसमें निराकारी आत्मिक स्टेज झलक रही है आंखों से ही। लेकिन ब्रह्मा की फोटो में निराकारी स्टेज नहीं दिखाई गई है, क्योंकि मां होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। ऐसा पहले भी बाबा ने मुरली में बोला हुआ है। तो फिर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा, इसलिए एक वाणी में कहा है ये ब्रह्मा चला जावे तो क्या स्वर्ग की स्थापना नहीं होगी? होगी। भले ये ब्रह्मा चला जावे तो जो भी जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ऐसे बोला। तो इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा, इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं। किन द्वारा? दादा लेखराज के तन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, यानी ब्राह्मण धर्म की स्थापना उस ब्रह्मा के द्वारा हुई। क्योंकि ब्राह्मण भी साकार होंगे या निराकार या आकारी? साकार होंगे, तो साकार की रचना भी साकार के द्वारा होगी। ब्राह्मण धर्म रचता हूं दादा लेखराज के द्वारा, ये नहीं कहा कि देवता रचता हूं। और कहते भी तो प्रैक्टिकल में तो होना चाहिए, फिर 69 के बाद कोई कह सकता है कि मैं देवता बन गया हूं या देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो गई है? क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो जाए तो दूसरे धर्मों का विनाश होना चाहिए। जब तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो सब धर्म खलास हो जाएंगे। तो ब्राह्मण रचता हूं ब्रह्मा द्वारा, नहीं तो ब्राह्मण कहां से लाऊं? तो ये हुई फर्स्ट मशीनरी, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचने की। और सेकंड मशीनरी क्या है? नहीं, ब्राह्मणों को फिर बैठ शिक्षा दे करके ब्राह्मण से देवता बनाता हूं। तो देवता बनाने का कार्य देवता के थ्रू ही होगा। जैसे लायर की पढ़ाई लायर ही पढ़ाएगा, डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर ही पढ़ाएगा, ऐसे ही देवता बनाने की पढ़ाई देवता के थ्रू ही पढ़ाई जाएगी। तो वही ब्रह्मा जो साकार तनधारी था अपना शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा देवता बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु तो बाद में बनेगा, लेकिन विष्णु बनने से पहले एक बीच की स्टेज और है जिसको कहते हैं शंकर। शंकर अर्थात मिक्स, सतो प्रधान शिव, सत्य ही सत्य, रजो प्रधान ब्रह्मा और तमो प्रधान वो आत्मा जो यज्ञ के आदि में छोड़ करके गई थी, राम वाली आत्मा। तो सत रज तम तीनों गुणों का मेल ये हो गया शंकर, जैसे कहते हैं वर्ण शंकर। तो ब्राह्मण कहां से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? कोई ब्रह्मा का भी बाप होता है क्या? किसे कहेंगे ब्रह्मा का बाप? जरूर कहेंगे भगवान। ब्रह्मा का बाप कौन? भगवान। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। शंकर को क्यों छोड़ दिया? शंकर को नहीं दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में तो दिखाते हैं लेकिन सूक्ष्म बतंग में भी सबसे ऊंचे तबके में, ब्रह्मापुरी से भी ऊपर, विष्णुपुरी और विष्णुपुरी से भी ऊपर परम धाम की ओर शंकरपुरी दिखाई जाती। यह है ऊंचे से ऊंची स्टेज। मनुष्य तन रूपधारी देवताओं में जो ऊंची से ऊंची स्टेज है उसको कहा जाता है देव देव महादेव। तो देवताओं में भी सबसे बड़ा, इसलिए वाणियों में मुरलियों में बोला हुआ है नेक्स्ट टू शिव है शंकर, नेक्स्ट टू शिव है प्रजापिता, नेक्स्ट टू शिव है कृष्ण। तो शिव ज्योति बिंदु के बाद जो गाड का रूप है वो परमात्मा शिव का ये स्वरूप है, चाहे उसको संगम युगी कृष्ण कहा जाए, चाहे शंकर कहा जाए और चाहे प्रजापिता कहा जाए। तो ब्रह्मा विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म बतन में। तो ब्रह्मा का बाप कौन हुआ है? ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी और मामा ने मां। तो बड़ी मां को रचने वाला कोई बड़ा बाप भी होगा कि ऐसे ही बड़ी मां बन गई? तो बड़ी मां शब्द ही जाहिर करता है कि कोई बड़ा बाप भी है जिसने उस मां को रचा, क्योंकि बच्चे तो बाद में रचे जाते हैं, पहले तो मां रची जाती है। तो ब्रह्मा हुई बन्नी और उसको रचने वाला हुआ प्रजापिता ब्रह्मा यज्ञ के आदि में, क्योंकि बन्नी बन ही तब सकती है जब बन्ना साकार में हो। शिव ज्योति बिंदु को बन्ना नहीं कह सकते, वो किसी का पति नहीं बन सकता जब तक शरीर धारण न करे, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं सब आपस में भाई भाई, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव सिर्फ बाप है, उसको दूसरा संबंध नहीं कह सकते। दूसरे संबंध शिव ज्योति बिंदु बाप के बच्चों के साथ कब बनते हैं? जब जब साकार में शरीर में प्रवेश करे। तो साकार प्रजापिता में प्रवेश करके परमात्मा शिव ने ब्रह्मा को भी अपनी बन्नी बनाया। तो ब्रह्मा बच्चा भी है, मुरली में बोला ब्रह्मा बच्चा भी है तो ये मेरी बन्नी भी है। तो ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म बतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, एडाप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। अब एडाप्शन साकार में होगी या निराकार में? एडाप्शन तो साकार में ही होगी। क्यों? क्योंकि एडाप्ट किया जाता है रचना को, एडाप्ट करने वाला होता है रचयिता। आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, तो आत्माएं भी अनादि और परमात्मा शिव ज्योति बिंदु भी अनादि, इसमें रचने की बात ही नहीं। जो चीज रची जाती है उसको अनादि नहीं कहा जा सकता। तो रचयिता बाप शिव और आत्माएं ये अनादि हैं, इनका रचयिता और रचना का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज रची जाती है वो कोई नई चीज हुई जो पहले नहीं थी। तो जब एडाप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। भारतीय परंपरा में भी ऐसे है, सन्यासी जब किसी शिष्य को अपना बनाते हैं तो उसका नाम बदल देते हैं। कन्या जब शादी होकर के अपने घर में जाती है तो उसका पीहर का नाम बदल दिया जाता है। तो शिव बाबा भी जब ब्रह्मा को अपनी बन्नी बनाते हैं तो ब्रह्मा का नाम बदल जाता है। पहले नाम था दादा लेखराज, फिर नाम बदल के क्या हो गया? ब्रह्मा। किसने बदला? बदलने वाला कौन? शिव। शिव क्या बिंदु ऊपर से आवाज आई क्या? जरूर किसी ने तो बताया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है, वरना ब्रह्मा तो खुद ही मुझे हुए थे। तो जिसने बताया वो ही रचयिता हुआ। तो नाम बदली किया जाता है, दादा लेखराज का नाम बदल करके क्या हुआ? ब्रह्मा। संन्यास भी कराया जाता है, सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं अपने पिछले नाम रूप को, देश काल को। जब तक जीते हैं तो याद जरूर रहता है, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग है। किसके लिए? अपने पूर्व जन्म के नाम रूप के लिए वैराग है। पूर्व जन्म का नाम और रूप, देश काल संबंधी सब सबसे वैराग, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने वाले, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ये दुनिया के जो लौकिक संबंध है सब धूल में मिलने वाले हैं, कोई संबंधी काम नहीं आवेगा अंत समय में। देह और देह के संबंधी किसी के काम आने वाले नहीं, ये सब संबंध झूठे हो जाएंगे। क्योंकि जब महाविनाश का महाप्रकोप होगा दुनिया में तो सबको अपनी अपनी पड़ेगी, कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा। एक परमात्मा बाप ही सबका रक्षक होगा, तो ये सब कब्र दाखिल होने वाले हैं, इसलिए हम उनको याद क्यों करें जो कब्र दाखिल होने वाले हैं। ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति, वो भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं साधु संन्यासी। क्या उनको वैराग्य कब आता है? हैं? कुछ न कुछ ज्ञान होता है नश्वरता का, ये प्रपंच कुछ भी नहीं, तो छोड़ देते हैं। तो यहां भी जब ज्ञान बुद्धि में उपजता है तो वैराग आता है सच्चा। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं बिन वैराग विराग नो, बिन वैराग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं पैदा हो सकता। तो सच्चा वैराग चाहिए, त्याग चाहिए, तो ज्ञान पैदा होता है, परमात्मा की पहचान होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो उन सन्यासियों से पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा, तो वो बताती नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उन सन्यासियों से पूछा जाए तुमने घर बार कैसे छोड़ा, तो पूरी सच्ची बात नहीं बताएंगे कि हमने कैसे छोड़ा। तो फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको सब याद है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं, अभी कलयुग की कर्म बंधन टूटने का है सबका। जो भी कलयुग के कर्म बंधन हैं, जिन जिन आत्माओं के साथ कर्मों के बंधन हैं, वो सब टूट जाने वाले हैं। फिर जाएंगे हम शांति धाम। जब तक 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है तब तक कोई आत्मा शांति धाम में नहीं जा सकती। तो शांति धाम जाना कोई शरीर छोड़ करके जाने की बात नहीं है, शांति स्टेज में स्थिर होने की बात है। कि कोई भी आत्मा शांति स्टेज में स्थिर तब तक नहीं हो सकती जब तक देह और देह के संबंधों का बंधन बंधा हुआ है। तो वहां शांति धाम से सबका नया संबंध जुटेगा वापस आने के बाद। समझाने की पॉइंट भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। पहले वॉइसलेस थे, निर्विकारी थे, किसका संग किया? संग तारे कुसंग बोरे, तो किसका संग किया है? अरे अरे वकील बनते हैं तो किसका संग करते हैं? वकील का संग करते हैं। डॉक्टर बनते हैं तो किसका संग करते हैं? डॉक्टर का संग करते हैं। तो राजा बनना है तो किसका संग करना पड़े है? जरूर जो राजाओं का राजा बनने वाला हो, जिसके ऊपर कोई राजाई चला ही न सके, यज्ञ के आदि में भी उसके ऊपर कोई राजाई चला ही नहीं सकता। इसलिए बाबा याद दिलाते मुरलियों में, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, हम उनके डायरेक्शन पर चलते थे। हम माने कौन? मम्मा बाबा भी उनके डायरेक्शन पर चलते थे। तो ऐसी पावरफुल आत्मा है जो मम्मा बाबा को भी अपने कंट्रोल में रखती थी, क्या वो इन दीदी दादियों दादाओं के कंट्रोल में आ जाएंगी? अरे उनको तो छोड़ो, उन आत्माओं का जो आदि का सारा ग्रुप है, जो शरीर छोड़ करके गया था और फिर अब शरीर दोबारा लेकर के यज्ञ में आया हुआ है, उस सारे ग्रुप में से कोई भी झुकने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, किसी देहधारी से प्राप्ति करने वाली आत्माएं नहीं है, वो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से प्राप्ति करने वाली आत्मा है। तो वो किसी देहधारी धर्मगुरु से कैसे झुकेंगे? इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, किसी देहधारी के अधीन होने वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अधीन नहीं होना है, जब परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, राजाई दे रहा है, अंजाम कर रहा है, बच्चे मैं तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगा, तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाऊंगा, तो कोई देहधारी मनुष्य गुरु कैसे राजधानी स्थापन कर सकते हैं? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, वो भी इस पुरानी दुनिया में पुराने होकर के शरीर छोड़ करके चले गए, कहीं वापस इस दुनिया से बाहर नहीं चले गए, इसी दुनिया में कहीं न कहीं पतित अवस्था में, तो वो भी नीचे गिर गए। तो जो 84 जन्म लेने वाली या ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाली मनुष्य आत्माएं जो इस समय पतित तमो प्रधान स्टेज में, वो कैसे ऐसी सर्विस कर सकती हैं मनुष्य से देवता बनाने की, नरक को स्वर्ग बनाने की? ये मनुष्य गुरु तो और ही नरक बनाते हैं इस दुनिया को, वैश्यालय बनाते हैं, शिवालय नहीं बना सकते। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं, अभी कलयुग की कर्मबंधन टूटने का है सबका, वहां फिर नई दुनिया में सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। ये भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने, अब फिर वॉइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, क्या बनने के लिए? वॉइसलेस बनाने के लिए। अभी तुमको बाप ने समझाया है। दूसरा पेज, बाप कहते हैं तुम वही हो ना, बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी वही है ना, वही माना है? जरूर पहले से परिचय हुआ पड़ा है। बच्चे कहते हैं आप भी वही हो ना, वही मन्ने कौन से कर देखा था कभी है? स्मृति आती है, जरूर स्मृति आती है, बुद्धि को स्मृति आती है कि हम वही हैं, वही बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ा करके राजी भाग दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे, ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे, यज्ञ के आदि में भी विघ्न पड़े थे, इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, कौन निमित्त बने, ब्रह्मा फिर बाप फिर बीच में घुस गए ब्राह्मण बच्चे, उन्होंने विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने में और आहुति दे दी। पहले निमित्त कौन बना है? अरे कोई लड़ाई होती है तो पकड़ा किसको जाता है, है? भाई दो लड़ रहे हैं तो लड़ने वालों में दो में से किसी एक की तो गलती है, पहली गलती एक की है, फिर दूसरी गलती दूसरे की है, फिर औरों की गलती है। तो स्पष्ट बता दिया निमित्त कौन बने, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, सभी तो हो गए लेकिन पहल किसने की, ब्रह्मा ने पहल की, यज्ञ के आदि में भी ये पहल हुई थी, बच्चों के मोह में आकर के माँ और बाप के बीच में झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा आगे चल करके और क्लियर होना है। कोई ऐसे आसुरी बच्चे थे जिन्होंने माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डलाने का काम किया, और जो आदि में हुआ सो अंत में भी प्रत्यक्ष होगा, आदि में तो सिर्फ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी और अब उसकी संपूर्ण आहुति होनी है। ये विनाश ज्वाला कोई साधारण ज्वाला नहीं है, विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से उठी और सारे विश्व को चपेट में ले बैठी, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। तो ड्रामे में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े वो फिर भी पड़ेंगे, आदि में भी विघ्न पड़े और अब अंत में भी फिर विघ्न पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है ये याद तो रहता है ना, तो हमारा भी ये ब्राह्मण जीवन है, कोई कोई आत्मा ब्राह्मण जीवन में भी दो दो तीन तीन जन्म लेती है, लेकिन हुआ तो ब्राह्मण जीवन ना, तो आगे पीछे की ब्राह्मण जीवन की बातें याद भी रहेंगी ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं कि गांवड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना, कौन किनको याद है, हैं? इनको तो याद है, इनको माने किनको, ब्रह्मा को सिर्फ, फिर तो इसको कहते, इसको न कह के इनको कहा, इनको माना बहुवचन में, यानी कोई दो आत्माएं हैं कम से कम जो बैगर टू प्रिंस बनती है, आगे भी बनी थी और अब भी बनी है, तो इनको तो सब याद है। बतलाते हैं गांवड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना, छोरा कहाँ का था? छोरा गंगा किनारे वाला। गीत भी बनाए दिए लेकिन वो गीत बनाने वाले तो का अर्थ जानते ही नहीं। बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा? ये तुम अभी जानते हो, इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है। कहां बैकुंठ, कहां ये नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख करके समझते हैं यही स्वर्ग है। कौन से मनुष्य समझते हैं? बाहर की दुनिया की सिर्फ मनुष्य समझते हैं ऐसा कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी ऐसे मनुष्य हैं जो बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां बनाए लेते हैं करोड़ों रुपए की और फिर समझते हैं कि हम स्वर्ग में आए बैठे, बाकी सारी दुनिया नरक में। ब्रह्मा बाबा ने हमको स्वर्ग दे दिया। बाप कहते हैं ये तो सब मिट्टी पत्थर हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो सत्युग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे, इस बात पर विचार करो। अरे बता दिया सोने के महल थे तो इसमें विचार क्या करें? हैं? अरे सोने के महल थे तो सोने ही के होंगे, सोने की दीवारें होंगी, सोने की ईंटें होंगी, इसमें विचार क्या करें? हाँ सोना माने सच्चाई, ईंटें माने आत्माएं हैं जो तैयार होती है ज्ञान योग की भट्टी में पकाई जाती है उन सोने की ईंटों के यानी सच्ची सच्ची आत्माओं के संगठन रूपी किले तैयार होंगे, संगठन रूपी महल बनेंगे, हम ही बनाएंगे, बाबा की श्रीमत पर बनाएंगे। बनवाने वाला बाप बैठा हुआ है। तो विचार करो सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे, ये प्रश्न क्यों किया? क्योंकि कोई कोई समझे बैठे हैं कि सतयुग में सोने के महल होंगे, वहां महलों की दरकार है। अरे वहां तो प्रकृति ही सारा कार्य करती है, मनुष्यों को कोई कार्य करने की दरकार होती नहीं। कपड़ा भी बनाने के लिए कोई वहां मिले नहीं होंगी, प्राकृतिक सौंदर्य होगा हर तरह का। तो वहां तो सब खानियां भरी हुई होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई आती है तो बाबा ने समझाया कोई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी मिला देंगे। कौन से रिकॉर्ड? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, इस रिकॉर्ड की गहराई को समझ लिया। कैसा कौन है जिसको पाकर के हमने सारा जहान पा लिया? किसी माता को अगर ऐसा बच्चा मिल जाए जिस बच्चे के लिए ज्योतिषी बताए कि ये विश्व का मालिक बनने वाला है, तो माता को कैसी खुशी होगी? अपार खुशी होगी। इस बच्चे को क्या पाया है? जैसे सारे विश्व की बादशाही मैंने पा ली। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बच्चों को अपने पास रखने चाहिए जो फौरन खुशी में ला दें। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वो मालिकाना कर भी कोई हमसे छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के मारे से। तुमको कितना रस नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बारे से बेहद की बादशाही के मालिक है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए जिसका वारिस बनते हैं। उनको भी जरूर याद करना है। क्या करोड़पति का बच्चा होगा तो उसको करोड़ ही याद आएगा या करोड़ देने वाला भी याद आएगा? हैं? करोड़पति का बच्चा सिर्फ करोड़ के ऊपर ही नजर रखेगा या करोड़ देने वाले बाप के ऊपर भी उसकी दृष्टि जाएगी?